ओम शांति। आज के अभी उद्घाटन सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने बहुत ही सुंदर अभी एक नाटिका देखी, जिसमें इस विषय को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस उद्घाटन सत्र के लिए मैं मंच पर आज के सभी मेहमानों को बुलाना चाहूंगी। आज के हमारे जो मेहमानों में हैं, सबसे पहले आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, आदरणीय बीके पूनम दीदी जी, राजयोगिनी प्रेम दीदी जी, हमारे आमंत्रित अतिथि में माननीय श्री फूल सिंह मीना जी, डॉक्टर चिराग भोरणिया जी, भ्राता चिंतन बांकीवाला, राजयोगिनी बीके तृप्ति बेन जी, बीके सतीश भाई जी, आप सभी से निवेदन है आज के इस कार्यक्रम में आप अपना मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आज का जो विषय है, आधुनिक संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन की कला। इस विषय को शुरू करेंगे हमारे मंचस्थ मेहमान। सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे कहा जाता, जहां मीठे वचन और सम्मान रहता, वहां सदा सुख और कल्याण रहता। जहां मीठे वचन और सम्मान रहता, वहां सदा सुख और कल्याण रहता। क्रोध, अहंकार और स्वार्थ को दूर भगाए, प्रेम, क्षमा और धैर्य को जीवन में अपनाए। क्रोध, अहंकार और स्वार्थ को दूर भगाए, प्रेम, क्षमा और धैर्य को जीवन में अपनाएं। डॉक्टर डॉली मोगरा जी, आपसे भी निवेदन है, आप अपना मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आज का युग आधुनिक तकनीकी और सुविधाओं का युग है। जीवन में साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार संबंधों में मधुरता कम होती दिखाई दे रही है। ऐसे समय में परिवार को प्रेम, संस्कार और आध्यात्मिक मूल्यों से सशक्त बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो आज के इसी महत्वपूर्ण विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा जाता, मकान ईंटों से बनता है, मकान ईंटों से बनता है, लेकिन घर प्रेम, विश्वास और संस्कारों से बनता है। तो आज के इस विषय को शुरू करने से पहले हम उसी परम कलाकार परमात्मा के शक्ति को अनुभव करें और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे।
कितना सुंदर, कितना विराट होगा रचनाकार,
कितना सुंदर, कितना विराट होगा रचनाकार।
रचा है जिसने इतना सुंदर, रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार।
कौन वो विराट रचनाकार,
कौन वो विराट रचनाकार।
कितना सुंदर, कितना विराट होगा रचनाकार।
आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे, आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे, वैसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है, निराकार वो चित्रकार है, सबका सृजनहार।
कौन वो विराट रचना का,
कौन वो विराट रचना का,
कितना सुंदर कितना विराट होगा रचना का।
आप सभी के स्वागत के लिए मैं मंच पर बुलाऊंगी बहनों को। आप सभी हमारे मंचस्थ मेहमानों को बुके और बेज से स्वागत करें। भारतीय संस्कृति में जो कहा गया अतिथि देवो भव, अतिथि माना जिसको कहते पहले, जिसकी कोई तिथि तारीख नहीं होती, ऐसे अतिथि हमारे बीच में सब पधारे हैं। हमारी यही संस्कृति जिसको आजीवन रखने के लिए हमारी बहनें सभी का स्वागत कर रहे हैं। हम सभी अपने अपने हाथों को थोड़ी एक्सरसाइज देंगे। दसों उंगलियों से उन्हों को थोड़ा सा हम अपना भी क्रिएटिविटी, अगर आप एक एक अंगुली को मिलाएंगे कुछ नहीं होता, सभी को पांचों को ऐसे मिलाएंगे तभी भी ताली नहीं बजती है, पूरे हाथ को मिलाना पड़ता है तब जाकर के ताली बजती। कहते आज घरों में मोबाइल है लेकिन संवाद कम है, सुविधाएं हैं लेकिन संतोष कम है, रिश्ते हैं लेकिन आत्मीयता कम है। जिसको अगर कहे हम सब प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं, है सर? हर रिश्तों में हर जगह पर हम प्रोफेशनल ज्यादा बन रहे हैं। पहले के समय में अगर हम देखें तो अपने परिवारों के अंदर किसी से भी अगर बाहर भी किसी से मिलना होता था तो उसको एक पारिवारिक भावना, अपनेपन की भावना, कुटुंब की भावना, कोई न कोई ऐसे संबंध जुड़ जाते जो सालों और जन्मों तक निभाते थे। आज सिर्फ प्रोफेशनल के हिसाब से मिलते, काम खत्म, बात खत्म, रिश्ते खत्म। लेकिन इसी आधुनिकता के अंदर हम अपने मूल्यों को कैसे संवार सके, इसके विषय में आज हम इकट्ठे हुए हैं। मधुरवाणी ग्रुप को बुलाने से पहले मैं माननीय दयाल भाई जी से निवेदन करती हूँ, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अभी मधुरवाणी ग्रुप हमारे बीच में अपनी मधुरवाणी से हम सभी का दिल झुमाएंगे, हम सभी अपने अपने मन के उमंगों के तरंगों को उसी गीतों के शब्दों में अपने आप को खो देंगे।
ओम शांति। एक बार सब कोई संवेद स्वर में कहें ओम शांति। बड़ी ठंडी आवाज आई जोरदार बुलंदी के साथ ओम शांति। आपका हुआ यहां है शुभागमन, हो रहा है अति प्रसन्न एक एक मन। धन्य हो गई धरा गा रहा गगन, खिल उठे चमन चमन विहस पड़े सुमन, विहस पड़े सुमन। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वयं का भी अभिनंदन करें।
आध्यात्मिकता लाए कलाकार मिलकर कल का आकार सजाए। आधुनिक संस्कृति में आध्यात्मिकता लाए कलाकार मिलकर कल का आकार सजाए। मूल्यों को बढ़ाए आओ परिवार बजाए, मूल्यों को बढ़ाए आओ परिवार बचाए। आए आमूलाज में हम स्वागत कर हर्षाए, स्वागत कर हर्षाए। आधुनिक संस्कृति में आध्यात्मिकता लाए कलाकार मिलकर कल का आकार सजाए।
आपकी तालियां होनी चाहिए, बात खुशी के पल हैं।
मोबाइल की दुनिया से कुछ वक्त चुरा ले, संस्कारों पर सजा ले। नई संस्कृति अपनाए पर मूल्य न होने दे। आओ फिर से हम घर को घर जैसा होने दे, आओ फिर से हम घर को घर जैसा होने दे, घर जैसा होने दे। जीवन के उत्सव में हर पल पर्व मनाए, आए आबू राज में हम स्वागत कर हर्षाए। ऑनलाइन में सामने ऑफलाइन से दूर, दुनिया से है कटे कटे और अपने में मशगूल। रील बनाए लेकिन रियल लाइफ ना भूले, इंटरनेट अंतर जाल है फंस कर ना झूले, इंटरनेट अंतर जाल है फंस कर ना झूले, फंस कर ना झूले। कलाकार अपनी कला से करते भला जाए, आए आबू राज में हम स्वागत कर हर्षाए। संबंधों में स्नेह बढ़े, रिश्तों में रस घोले, आदर और सत्कार की मीठी बोली बोले, प्यार जहाँ परिवार वहाँ सच में स्वर्ग वहाँ, आए प्रभु परिवार में असली स्वर्ग यहाँ, आए प्रभु परिवार में असली स्वर्ग यहाँ, असली स्वर्ग यहाँ, प्रसन्न होकर प्रभु प्रेम के पुष्प बरसाए, आए आबू राज में हम स्वागत कर हर्षाए, आधुनिक संस्कृति में आध्यात्मिकता लाए, कलाकार मिलकर कल का आकार सजाए, आधुनिक संस्कृति में आध्यात्मिकता लाए, कलाकार मिलकर कल का आकार सजाए, मूल्यों को बढ़ाए आओ परिवार बजाए, मूल्यों को बढ़ाए आओ परिवार बचाए, आए आबू राज में हम स्वागत कर हर्षाए, स्वागत कर हर्षाए, आधुनिक संस्कृति में आध्यात्मिकता लाए, कलाकार मिलकर कल का आकार सजाए, आधुनिक संस्कृति में आध्यात्मिकता लाए, कलाकार मिलकर कल का आकार सजाए।
हेलो, बहुत ही सुंदर हम सभी के बीच में अपने दिल के उद्गार रखे, जैसा कि नाम है वैसा ही अपने मधुर स्वरों में सभी के दिलों को जीत लिया। अभी स्वागत की कड़ी में हमारे बीच स्वागत नृत्य लेकर आ रही है आगरा ग्रुप की कुमारियां। आगरा ग्रुप की कुमारियां, गीत के शब्द है अपनी खुशी का किस तरह करे इजहार। आगरा ग्रुप की कुमारियां, बहुत सुंदर बहुत सुंदर अपनी कला को हमारे दिल तक पहुंचाया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आपके लिए हम तालियों से उन्हों का स्वागत सम्मान कर देंगे। आपको भी सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। तालियां भी बजा दीजिए साथ में। दयाल भर जी के हाथों से, दीदी के हाथों से आप सभी का एक ग्रुप फोटो भी लिया जाएगा। खास आगरा से आप सभी को स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी पीके पूनम दीदी जी, आप राष्ट्रीय संयोजिका कला संस्कृति प्रभाग दिल्ली से हैं। आप बचपन से ही इस विद्यालय से जुड़े 47 ईयर्स से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर आपका शालीमार सेवा केंद्र आप संभालते हैं। आपकी आध्यात्मिक सेवाएं सदा सक्रिय है। आप कला संस्कृति के बहुत ही अच्छे पहले से ही इस विंग्स की जब से स्थापना हुई तभी से लेकर आज तक अपनी अविरत सेवाएं दे रहे हैं। आपको आपने एक जो अभिनेत्री ग्रेसी सिंह है, आपने उन्हों को इस विद्यालय का जो राजयोग कोर्स है वो कराकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से परमात्मा से जोड़ने का एक बहुत ही उत्तम कार्य किया है। हम करतल ध्वनि से दीदी का उसके लिए सम्मान करेंगे। और आज वर्तमान समय विलेपार्ले सेवा केंद्र पर वो ग्रेसी सिंह इस विद्यालय की रेगुलर स्टूडेंट के रूप में जाकर अपनी सेवाएं दे रही है। और आप माउंट आबू के अंदर आयोजित अभी के ऐसे सम्मेलनों के अंदर अनेक कलाकारों को लाकर उनके जीवन को बनाया है। तो ऐसे हमारी दीदी जी का जो कि नाम ही है पूनम दीदी, तो ऐसे पूर्णिमा की तरह हम सभी का स्वागत करने के लिए आए हैं। दीदी से निवेदन है।
ओम शांति। हम सभी ये जानते हैं कि हमारा कला का जो जगत है वो बड़ा ही विशाल है और बहुत ही विस्तार कलाओं का उसमें समाया हुआ है। तो कलाकारों का इस हिसाब को देखते हुए हृदय भी कितना बड़ा विशाल होना चाहिए है? उसके लिए ये पोज बहुत छोटा सा है, लेकिन उनका हृदय भी बड़ा विशाल होना चाहिए, सरल स्वभाव और विशाल हृदय, यह कलाकारों की पहचान है। अपने अनुभव से हमने ये जाना है कि जब भी किसी कलाकार के संपर्क में आए हैं तो सदैव कलाकार में विनम्रता एवं आदर का मिला जुला स्वरूप देखने को मिला है। जब भी हमारी संस्था ने किसी भी कलाकार को निमंत्रण दिया है तो उन्होंने सहज ही स्वीकार किया है। और फिर कुछ ऐसे कलाकार हैं जो स्वयं अपनी ओर से भी आने की इच्छा जाहिर करते हैं। उन्हीं में से आप सब जो यहाँ पधारे हुए हैं वो एक एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनकी स्वयं की इच्छा भी थी कि हम माउंट आबू ज्ञान सरोवर सम्मेलन में जाएं। तो बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मैं आप सबका आत्मिक प्रेम से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हृदय के उद्गार हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बस यही बोल निकलते हैं कि यह संस्था और हम सब भाई बहन आपका अभिनंदन करते हैं। मधुबन की ये बगिया आपके आगमन से और अधिक खिल उठी है। ओम शांति, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति हमारा मंत्र भी है, यही हमारा अभिवादन भी है और यही हमारा अभिनंदन भी है, क्योंकि कलाकारों को तो एकाग्रता और शांति बहुत प्रिय है। तो पुनः पुनः आपका स्वागत करते हुए सम्मानित मंच पर उपस्थित मेहमानों का स्वागत कर रही हूँ। सर्वप्रथम अपने चंद्रिका दीदी जी, जो कि हमारे इस विंग के चेयर पर्सन हैं, कल से ही आप उनसे वरदानी दृष्टि भी ले रहे हैं, उनके वरदानी प्रेरणा वाले बोल भी सुन रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि इस धरती पर सभी बड़ी दूर दूर से पधारे हुए हैं, तो सर्वप्रथम तो मंच पर उपस्थित मेहमान और सभा में उपस्थित श्रोतागण, आप सबके लिए स्वागत में मैं यही कहना चाहूंगी, खातिर हमारी दूर से जो आए आप बड़ी मेहरबानी, खातिर हमारी दूर से जो आए आप बड़ी मेहरबानी, आने से ही आपके, आने से ही आपके हुआ वातावरण रूहानी। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, सदा खुशियों से भरी रहे आपकी जिंदगानी, आपकी जिंदगानी। मंच पर उपस्थित सर्वप्रथम मैं आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, जो कि हमारे कला संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा हैं, अहमदाबाद महादेव नगर में आपका निवास स्थान, सेवा का स्थान है, सेवा का क्षेत्र है। यूं तो इस समय चेयर पर्सन होने के नाते सारा विश्व ही आपका सेवा स्थान बन चुका है, तो ऐसे विशेष व्यक्तित्व वाली हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी हमारे बीच में हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि आप भी कुछ कुछ मन में उनके स्वागत के लिए बोल दें, विशेष करके जो हमारे कवि और संगीतकार बैठे हैं, वो तो शायद अंदर अंदर दीदी के स्वागत में कुछ गुनगुना भी रहे होंगे, तो लेकिन मैं आज उनके लिए यही कहती हूँ कि आपके आने से दीदी, आपके आने से आलम चहकने लगा, क्यों लगा जैसे चंदन महकने लगा, जैसे चंदन महकने लगा। आप आए यहाँ मेहरबानी करम, स्वागतम 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 स्वागतम। इसके साथ साथ आज की सभा के जो हमारे आमंत्रित अतिथि हैं, डॉक्टर डॉली मोगरा जी, आप मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग विभाग के अध्यक्ष हैं, आपका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन है। आपके साथ साथ हमारे फूल सिंह मीना जी, जो कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आप विधायक हैं, उदयपुर ग्रामीण के ग्रामीण सभापति हैं, विधानसभा के सभापति हैं राजस्थान सरकार के, तो आपका मैं पुनः पुनः हृदय से स्वागत करती हूँ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे आज की शुभकामनाओं को देने वाले हमारे अतिथि डॉक्टर चिराग बोरड़िया जी, जो कि अहमदाबाद से पधारे हैं, डॉक्टर साहब का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे मंचासीन, हमारे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बहनें, विशेष रूप से हमारी आदरणीय प्रेम दीदी जी, जिन्होंने कल आपके सन्मुख स्वागत आप सबका किया था और आज भी आपके सामने अपने विचार रखने वाली हैं, ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय प्रेम बहन जी का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी तृप्ति बहन जी, जो कि गुजरात भावनगर में अपनी इस विंग की लगातार, जब से ये विंग बना है तब से अपनी सेवाएं दे रही हैं, और भी विंग्स की सेवाओं में आप हमेशा आगे आगे रहते हैं, और आज आप सबको रूहानी यात्रा करवाने वाली हैं, परमात्म मिलन का अनुभव करवाने वाली हैं, तो ऐसे तृप्ति बहन का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। उससे पूर्व हमारा मधुरवाणी ग्रुप, जो आप सबका स्वागत गीत के माध्यम से करके गए, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे मंच संचालन करने वाली फाल्गुनी बहन से पहले दैवी भ्राता दयाल भाई जी, जिन्होंने कल ज्ञान सरोवर का आपको शब्दों के द्वारा भ्रमण करवाते हुए वो आपसे चाहते क्या हैं, अपनी चाहना की बातें भी उन्होंने आपके सामने रखी, जो कि यहाँ का सारा कार्यभार ज्ञान सरोवर का, रिसेप्शन का संभालते हैं, और विंग के भी आप उपाध्यक्ष हैं, तो मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
स्वागत करने वाले हमारे पूनम दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हमारा मुख्य वक्तव्य देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी प्रेम दीदी जी पहुंचेंगे। आप राष्ट्रीय संयोजिका कला संस्कृति प्रभाग करनाल से हैं, कल भी आपका परिचय हम सबको मिला था आप, लेकिन इस विषय को पारिवारिक सद्भावना के जो एक ये अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत आप लॉन्चिंग कार्यक्रम के लिए भी पूरे भारतवर्ष में कई जगह पर अंबाला, शाहबाद, सहारनपुर आदि स्थानों पर जाकर के आपने दीदी जी के साथ बहुत अच्छी सेवाएं और प्रोग्राम आयोजित किए, और आप मुख्यालय के कार्यक्रमों के अंदर भी अनेकों को लाकर के अनेकों का भाग्य बनाने के हेतु अपना समय शक्ति दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आज का जो मुख्य वक्तव्य है आप हमारे बीच में रखें, आदरणीय प्रेम दीदी जी।
ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप परम कलाकार निराकार चित्रकार रचनाकार सृजनहार और सजीव मूर्तिकार प्यारे शिव पिता की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, अध्यक्षा कला संस्कृति प्रभाग, हमारे आज के इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हमारे भ्राता फूल सिंह मीना जी, विधायक उदयपुर ग्रामीण, राजयोगी भ्राता दयाल भाई जी, आदरणीय भ्राता सतीश जी, तृप्ति बहन जी व मंच पर सम्माननीय अतिथिगण, हमारी बहुत ही स्नेही पूनम बहन जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर आर्ट एंड कल्चर विंग तथा आज की सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम आज के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आप सभी का मंच पर उपस्थित व सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं अपनी ओर से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के बहुत ही सुंदर विषय को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विषय है आधुनिक संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन की कला। तो दो शब्द आते हैं आज के इस विषय के अंदर, बहुत ही प्रचलित, प्रख्यात और सदा ही इन दो शब्दों को हम सुनते ही रहते हैं। एक तो संस्कृति, आधुनिक संस्कृति कहा है तो इट मीन्स कि प्राचीन संस्कृति भी हमारी रही है। जिस प्राचीन संस्कृति को याद करते हुए हम क्या समझते हैं, क्या है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति? हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति है दैवी संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, अतिथि देवो भव की संस्कृति, सर्वे भवंतु सुखिना की संस्कृति, दातापन की संस्कृति, स्नेह शांति सद्भावना और एकता की संस्कृति, अपनेपन की अपनत्व की संस्कृति। दूसरा शब्द आता है मूल्य। मूल्य हम सब समझते हैं, मूल्य यानी वैल्यूज कौन कौन सी हैं? मोरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फैमिली वैल्यूज की। अगर फैमिली वैल्यूज हम अपने अंदर फिर से उजागर कर लें, क्रिएट कर लें, उन्हें बढ़ाएं, उनमें स्थित हो जाएं, तो नेचुरल है कि हमारी बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं ऑटोमेटिकली हमारे जीवन के अंदर समाहित होना शुरू कर देंगे। तो पारिवारिक मूल्यों की अगर हम बात करते हैं तो आज हम देखते हैं चारों ओर परिवारों की क्या हालत है। जो परिवार कभी संयुक्त परिवार हुआ करते थे, संगठित परिवार हुआ करते थे, तो आज देखने में आता है उन परिवारों का विघटन हो रहा है, एकल परिवार बनते जा रहे हैं, एकांकी परिवार बनते जा रहे हैं। और आधुनिक संस्कृति इतनी हावी हो चुकी है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति पर कि हमारे अंदर होने वाले जो पारिवारिक मूल्य रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं एकता, विश्वास, स्नेह, अपनापन आदि आदि, वो सब मूल्य कितने क्षीण हो चुके हैं या मानव मन के सिर्फ कहें तो किसी कोने में छिपे रह गए हैं। और जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का कितना सुंदर गायन आज तक हम सुनते आए हैं कि यहाँ तो गौ और शेर भी एक घाट पर पानी पिया करते थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो आज एक घर में भाई भाई ही आपस में लड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के पीछे, छोटी छोटी जागीर के पीछे, संपत्ति के पीछे, यहाँ तक कि एक दूसरे का मर्डर तक कर रहे हैं। तो कहाँ पहुंच गई है हमारी वो मूल्यवान संस्कृति, उसका दर्शन तो हम सभी यहाँ रहते हुए अपने समाज में समय प्रति समय कर ही रहे हैं। तो इस पर जब विचार सागर मंथन किया कि क्या ऐसा किया जाए जो परिवारों में मूल्यों की वृद्धि हो, पारिवारिक मूल्यों की वृद्धि हो और पारिवारिक मूल्य क्षीण ना हो, वो एक रस रहें और परिवार एकता के सूत्र में बंधा रहे, तो कुछ चीजें निकल कर सामने आई। तो देखने में आया कि आज साधन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कमी है तो कहाँ रह गई है, वो है संबंधों की मिठास में कमी। आज देखने में आता है कि घर बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, परंतु सबके मन जो हैं वो देखने में आता है बहुत संकीर्ण और बहुत छोटे छोटे हो चुके हैं। आज साथ भले रह भी रहे हैं, लेकिन साथ रहते भी एक दूसरे के मन कितनी दूर जा चुके हैं। आज सोशल मीडिया ने हमें कितने करीब कर दिया है, यूं तो ग्लोबल विलेज बन गया है संसार। एक सेकंड में आप कहां से कहां बात कर सकते हैं, लेकिन एक छत के नीचे रहते हुए भी दो लोग भी आपस में कई कई महीनों तक आपस में बात नहीं करते। तो समझ में आता है कि आज परिवारों में देखें तो कितना उलझन, समस्या, कितना स्ट्रेस, टेंशन और कितना डिप्रेशन, इन सब चीजों को देख करके बढ़ता चला जा रहा है। तो कारण क्या है इस बात के, तो उनमें देखने में आता है कि मुख्य कारण है कि अपेक्षाएं बहुत हैं आज एक दूसरे से। सोचते हैं परिवार में हर एक सदस्य सोचता है कि सब मेरी ही सुने, मेरी ही बात माने, मेरी ही बात को तवज्जो दिया जाए, मुझे समझा जाए, मेरी भावना को समझा जाए, मैं जो कहूं वो हो जाए तो सबसे अच्छा। लेकिन जो है जैसा है हम स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति को धारण करें और ये सोचें कि हम स्वपरिवर्तन से ही औरों का परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम खुद को जरा भी चेंज ना करें और सब दूसरों को चेंज करना चाहें हर बात में, तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हमें सबको स्वीकार करने की अपने अंदर में भावना होनी चाहिए। आखिर भी तो हमारा परिवार है, हमारे समीप संबंध हैं, और फिर हमारे मधुर संबंधों का आधार है कि हम एक दूसरे को सम्मान दें, रिगार्ड दें। आज सिर्फ बड़े ही नहीं लेकिन छोटों को भी देखने में आता है कि सम्मान चाहिए। उनको भी हम आप कह करके, हाजी कह करके बात करते हैं तो छोटों को भी बहुत अच्छा लगता है और बड़ों के प्रति उनका रेस्पेक्ट बढ़ता है। और हम बड़े ही नहीं लेकिन सब छोटों की भावनाओं को भी, जब वो हमारे सामने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, तो उनका भी हम सम्मान करें, उनका भी हम रेस्पेक्ट करें। और छोटी छोटी बातों को हम पकड़ के ना रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत लंबे समय तक हम छोटी छोटी बातों को जब अपने मन के अंदर बार बार उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं को खींचते रहते हैं, लंबे समय तक उन बातों में जाने से परिवार की एकता टूटती है, समय, एनर्जी सब कुछ व्यर्थ जाता है और उन वाइब्रेशंस परिवार में ऐसे फैल जाते हैं कि दोबारा ठीक होना उनका कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जल्दी से जल्दी हम उस बात को फिनिश करें, उसके ऊपर हम फुल स्टॉप लगाएं और फिर जल्दी से हम आगे बढ़ें। और हम जरूर प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय अपने परिवार के साथ गुजारें, क्योंकि सोशल मीडिया के इस युग में, कल भी बात चल रही थी कि हाथ में हर समय हर एक के हाथ में मोबाइल रहता है, 4, 6, 8 लोग घर में बैठे हैं, इकट्ठे भी भले बैठे हुए होंगे अपने ड्राइंग रूम में, परंतु हर एक अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने में लगा हुआ है। लेकिन पास में बैठे हैं तो क्यों ना वो थोड़ा सा समय हम आपस में बात करें, आपस में अपने विचारों की लेन देन करें, अपने घर की बातों को, कुछ परिस्थितियां हैं उनके समाधान की बात को हम अगर सोचें, तो अगर हम उसी मोबाइल में ही लगे रहेंगे तो आपसी हमारा तालमेल सोचिए तो किस समय और कब होगा। फिर तो हम दूर दूर और दूर ही होते चले जाएंगे। जबकि ये साधन बड़े लाभदायक भी हमारे लिए हैं, लेकिन वही अगर हम इनका मिसयूज करते हैं तो बहुत नुकसानकारक, बड़े डेंजरस भी सिद्ध होते हैं। इन बातों के लिए, परिवार की एकता और संगठन के लिए, जो परिवार के बड़े हैं उनको खुद एग्जाम्पल और खुद सैंपल बनना होगा। व्यवहारिक मूल्यों में, नैतिक मूल्यों में जब खुद को सबके सामने पेश करेंगे, अपने आप को उदाहरण और सैंपल के रूप में सबके सामने रखेंगे, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे जब पेरेंट्स हम छोटे हुआ करते थे तो पूरे परिवार को एक 50 मिनट की आरती, जो भक्ति मार्ग में हम सब आरती विभिन्न प्रकार की बोलते हैं, तो ऐसी एक आरती हम सब बच्चों को भी रटा रखी थी कि भोजन तभी मिलेगा जब सभी इकट्ठे बैठेंगे, और इकट्ठे बैठ करके जब वो आरती गाएंगे तो उसके बाद भोजन मिलेगा। तो आप देखिए कि शायद वही जो उन्होंने हमारी स्पिरिचुअल नींव को, धार्मिक भावनाओं को उस समय नींव ऐसी रखी, हमारे मन में वो बीज डाला, उसी बीज का के फल स्वरूप ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसा मुझे एहसास होता है। तो बच्चों के मन के अंदर आध्यात्मिक धार्मिक भावनाएं भी अगर जागृत करें, लेकिन कब करेंगे, जब खुद स्पिरिचुअल माइंड होगा, हमारा खुद लगाव होगा उस परमपिता परमात्मा से अथवा आध्यात्मिक भावनाओं से, तभी हम उनके आगे भी सैंपल बनेंगे, और फिर खुद उन वैल्यूज को उनके सामने पेश करें। जैसे कि मान लीजिए खुद अगर झूठ बोलेंगे तो अपने बच्चों को भला कैसे आप समझा सकेंगे कि वो सच बोलें। जैसे हम एग्जांपल सुनते हैं कि फादर ने अपने बच्चे को कहा, बाहर आए हुए व्यक्ति को बोल दो कि पिताजी घर में नहीं है। अब बच्चा बेचारा इनोसेंट है, वो बाहर जाके क्या कहता है कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर पे नहीं है। अब आप देखिए कि एक बच्चे के सामने इस प्रकार की अगर हम अपनी पेश करेंगे भावनाएं, या समझो इस प्रकार की बात करेंगे, तो नेचुरल है कि बड़ों से ही छोटे सीखते हैं, बड़े ही अपने छोटों के अथवा परिवार के आदर्श होते हैं। तो उस चीज को हम समझने का प्रयास करें, और नियमित आपस में हम संवाद करें, दूरी न बना करके रखें, और पारिवारिक जो परंपराएं हैं, कल भी बात चली थी, पारिवारिक परंपराएं जिसमें कोई जन्मदिन मनाते हैं या कोई धार्मिक आयोजन होते हैं, तो उसमें हमारा पूर्ण रूपेण प्रयास रहना चाहिए कि घर के सभी सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें संगठित रूप में सबका रोल हो, सबको उस अहमियत का पता हो कि इस मौके पर हमको जाना ही जाना है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं उस आयोजन में इकट्ठा होने पर। तो इसलिए उस बात को भी हम ध्यान में रखें, और परिवार के हर सदस्य का हम महत्व समझें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके घर में किलकारियां जब गूंजती हैं तो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होते हुए भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं। एक बड़ा बुजुर्ग घर में होता है तो कितना, आप देखिए, एक छत्र छाया के रूप में होता है, जिसकी छाया का हम सब अनुभव करते हैं कि खुले घर को छोड़ करके आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि घर का मालिक घर में बैठा है। तो बड़ों बड़ों का भी अगर हम घर में रेस्पेक्ट करेंगे, रिगार्ड करेंगे, तो अवश्य ही हमारे भारत देश में जो जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कितने सारे बुजुर्गों के आश्रम, क्या कहते हैं उनको, वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई बढ़िया वाली बात नहीं है। अगर हम अपने बड़ों का सम्मान करें तो हर कोई कह देता है नहीं नहीं हम तो अपने बड़ों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अगर सम्मान करेंगे तो फिर ये वृद्ध आश्रम किस लिए और किसके लिए और किसने खोले हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, हम अपने परिवारों को एकमत करने के लिए अथवा अपने परिवारों में अगर प्रेम, स्नेह, सहयोग, सम्मान, सद्भावना, इन मूल्यों का समावेश करेंगे, इन मूल्यों को समाहित करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि हमारे परिवार, जो हमारे आज के इस सेशन की, हमारी इस पूरी कॉन्फ्रेंस, हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी ने मन में ये भाव लेकर के कि बहुत वृहद लेवल पर तो हम सेवाएं करते हैं, लेकिन घर घर में जाकर के 10-20 का जो फैमिली होती है उनके बीच में जाकर के भी हम उनको इस प्रकार की बातें अगर सिखाएं, समझाएं, तो परिवार परिवार मिलकर के ही समाज बनता है, कई समाज मिलकर के देश बनता है, कई देश मिलकर के विश्व बनता है। तो सारा विश्व ही स्वर्ग बन जाएगा जब हम पारिवारिक मूल्यों को फिर से जागृत करेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।
बहुत 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 धन्यवाद। आपके चरणों से प्रेरणा की राह मिली, आपकी वाणी से हर आत्मा को चाह मिली, ज्ञान और प्रेम का ऐसा अमृत बरसा जिससे जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ी। आपका तहे दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे बीच में अतिथि विशेष के रूप में डॉली मोगरा जी पधारे हैं। आप अध्यक्ष फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग विभाग मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय की ओर से पधारे हैं और आपने शैक्षणिक एवं शोध उपलब्धियों के अंदर 20 से भी अधिक वर्षों का आपका अनुभव है। 3 पुस्तकों का लेखन आपने किया है। 40 से भी अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र भारतीय वस्त्र एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान तथा G20 में भी आपके भारतीय संस्कृति का प्रस्तुतिकरण आपने किया है। तो आपको आपका वक्तव्य रखने के लिए निवेदन है डॉक्टर डॉली मोगरा जी।
ओम शांति। अयम निजह परोवेति गणना लघु चेतनाम उदार चरिता नाम तू वसुधेव कुटुंबकम। ज्ञान और गरिमा के प्रतीक मंचासीन सभी अतिथिगण एवं हमारी प्यारी दीदी, जैसे ही मैं मंच पर आ रही थी तो मैंने देखा कि सभी के नाम यदि देखे जाएं तो किसी न किसी मूल्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत ही सुप्रभाषित सी माला हमारे बीच में मंच पर विराजित है। मैं एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि इतने सुंदर सुशोभित नामों के साथ हमारा मंच जो है वो सुशोभित हो रहा है। और जैसा कि मैंने सुक्ति कही है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना वही रखते हैं जो उदार मन वाले होते हैं। और आज इस मंच तक हम आए हैं, इस सभागार में हम लोग आए हैं, तो इसका ये मतलब और अर्थ निकलता है कि हम कहीं ना कहीं उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सम्मान करते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी किताबें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बता पाती, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं हमें बड़ी बड़ी बातें सिखा जाती हैं। कई बार मैं क्लास में जब होती हूं तो बच्चे मशीन चला रहे होते हैं, सिलाई मशीन चला रहे होते हैं, और सिलाई मशीन चलाते चलाते बच्चे जो हैं मशीन रुक जाती है तो बिना कुछ सोचे समझे वो मशीन का स्विच ऑन ऑफ करते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बच्चों को देखती हूं तो उनमें धैर्य नहीं होता है, संतोष नहीं होता है और मशीन को बंद चालू करने का क्रम बिना किसी सोच समझ के चलता रहता है। जब मैं उनके पास जाती हूँ और उन्हें ये समझाती हूँ कि तुम मशीन को बंद चालू करने के बजाय और उसके व्हील को घुमाने के बजाय तुम उसके असली कारण को देखो कि क्या नीचे का धागा तो नहीं टूटा हुआ है, कहीं ऊपर का धागा तो नहीं टूटा हुआ है, कहीं कपड़े में कोई गठान तो नहीं आ गई है। लेकिन अगर ये सब्र हम में आ जाए तो हम शायद मशीन को दोबारा पुनः उसी गति से चला सकते हैं। तो ऐसी कई छोटी छोटी बातें हमारे रिश्तों में भी आ जाती है और हमें ये समझ नहीं आता कि गांठ कहाँ पर पड़ गई है। हम उस रीजन तक नहीं पहुंच पाते, उस रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाते कि आखिर हमारे रिश्तों में दरार क्यों आई है, क्यों हमारी संस्कृति जो है हमें इस तरह के सम्मेलन इस देश में करने की जरूरत पड़ रही है जो देश भारतीय संस्कृति जिसे विश्व गुरु माना जाता था वहां पर हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो हमें बहुत ही दुख होता है। एक और बात, जैसे कि हम कला और संस्कृति की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में अभी तक जो मैंने अपने सीखा है अपने ज्ञान से तो मुझे लगता है कि जो भारतीय कला है उसमें पूरा परिवार समाहित हुआ करता था। बच्चे से लेकर घर का जो वृद्ध पुरुष हुआ करता था वो सभी काम करता था। आजकल बहुत सारे डिजाइनिंग कॉलेजेस खुल गए हैं, NIFT, NID, इस तरह के बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो हमारे देश में खुल गए हैं। लेकिन अगर हम देखें कि एक कुम्हार जो है वो मिट्टी का घड़ा बनाता है, शायद आपको पता होगा कि मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि हमारे देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहते हैं उसकी स्थापना के पीछे एक कहानी थी लोटे की। और वो लोटे की कहानी जो थी वो हम लोगों ने नहीं पहचानी बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो साइंटिस्ट बाहर से बुलाए और उन्होंने कहा कि हम हमारे देश में एक ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना करना चाहते हैं जो कि डिजाइनिंग के बारे में शोध करे, जो कला की बात करे, जो संस्कृति की बात करे। तो उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और जब वो वापस दिल्ली आए तो उन्होंने कहा कि हमें भारत की सबसे अच्छी चीज लगी वो है लोटा। अब लोटा क्यों वो सबसे अच्छा है तो मैं ये बताना चाहूंगी कि लोटा जो है वो जब से आविष्कार उसका हुआ, जब से वो बना, वो अलग अलग रूपों में आया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग शेप में आया, कभी मिट्टी का बना, कभी तांबे का बना, कभी चांदी का बना, तो कभी पीतल का बना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अगर आप उसमें पानी भरते हैं, मतलब उसका साइंटिफिक जो थ्योरी थी उसके पीछे कि जब आप उसको बीच उसका बीच का हिस्सा जो पकड़ने वाला हिस्सा है वो बहुत ही पतला बनाया गया है तो कोई भी उसे चाहे वो बच्चा हो चाहे वृद्ध व्यक्ति हो चाहे जवान व्यक्ति हो वो उसे बहुत आसानी से उठा लेता है, बहुत आसानी से पकड़ लेता है और आसानी से उससे पानी पी लेता है। अगर उसी लोटे को बड़े रूप में देखें तो मटका बनता है और मटके को यदि हम घड़े को हम अपने सर पे रख लें, कमर में रख लें, मतलब महिलाएं जब पानी को लाती हैं घर में लाती हैं या कुएं से पानी खींच रही होती हैं तो पानी बहुत कम झलकता है, बहुत कम घुलता है, तो उसका जो सरफेस टेंशन बनाया गया है वो इतना अच्छे से डिजाइन करके बनाया गया है कि उसकी तोड़ आज तक नहीं हमारे पास निकली है। तो हम एक ऐसी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक ऐसी कला के बीच में रह रहे हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे मूल्य जो हैं खत्म हो रहे हैं। तो हमें सोचना होगा कि हमारे मूल्य क्यों खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आज हमने डिजाइन कॉलेज खोल दिए हैं जहां पर हम सिर्फ डिजाइनर्स बना रहे हैं लेकिन हमारा जो कुम्हार है, जो हमारी हाथ की कला करने वाली हस्तकलाएं हैं, उनमें जो फैमिलीज लगी होती थी उसमें पूरा परिवार साथ मिलकर काम करता था। अगर घर में हथकरघा चलता था तो क्या होता था, कोई बच्चा जो है वो धागों को बना रहा है, धागों को मिलाकर काम कर रहा है, घर की महिलाएं रंग संयोजन कर रही है, जो घर के वृद्ध हैं वो डिजाइन्स बता रहे हैं, जो युवा पुरुष हैं वो मार्केट जाकर उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो एक पूरा कुटीर उद्योग जो था वो घर में ही हो जाता था और इन सबके बीच में घर के आपस के जो प्रेम जो थे, संवेदनाएं जो थी, वो सब कुछ चलती रहती थी और हमें कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं होती थी। एक और वाक्या जो मुझे याद आता है कि एक यात्री था, जब वो यात्रा करते हुए जाता है और देखता है कि मूर्तिकार जो है वो मूर्ति बना रहे हैं और वो एक मूर्तिकार के पास जाकर रुकता है और उनसे पूछता है कि ये मूर्ति जो है मतलब तुम क्या बना रहे हो, तो वो कहता है कि मैं तो पत्थर काट रहा हूँ, देखते हैं क्या बनेगा। वो आगे जाता है, दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो वो जो भाई होता है वो अपना हथौड़ी जिससे वो पत्थर को तराश रहा होता है वो रखता है, थोड़ा मुस्कुराता है और आराम से बोलता है कि मैं पत्थर को तराश रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से कोई ना कोई अच्छी मूर्ति जो है, कोई ना कोई अच्छा किरदार इसमें से निकल कर आए। तो जो असली चीज है वो यही है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा विजन कैसा है, हम किस तरह से अपने संवेदनाओं को देख रहे हैं, हमारे भारतीय मूल्यों को देख रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि जो वस्त्र हैं वो हमें किस तरह से जोड़ रहे हैं, एक कलाकार जो होता है उसमें संवेदनाएं होती हैं, जैसे दीदी ने भी कहा था कि कलाकार जो होता है वो पवित्र आत्मा लिए हुए होता है, कलाकार जो होता है वो सबको साथ मिलकर चलता है, जो यूनिटी हार्मनी होती है, जो फैमिली की वैल्यूज होती हैं, वो एक कलाकार ही जिंदा रख सकता है, हमारी संस्कृति ही जिंदा रख सकती है। तो इन सबको अगर हम साथ लेकर चलें तो हमारे परिवार जो हैं वो बचे रहेंगे और हम सब कोशिश करें कि इस ये जो आहुति हमें इस सम्मेलन के रूप में देने को मिल रही है वो हम देते हुए आगे बढ़ें। और मुझे यहाँ आने का मौका मिला इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आपको कभी मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी आने का मौका मिले तो आप आइए कि हम किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, किस तरह से हम विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी जनजातियां हैं वो सबसे ज्यादा विरासत को बचाने का काम कर रही हैं। जब मैं अपना शोध कार्य कर रही हूं तो मुझे लग रहा है कि माउंट आबू के पास की जो गरासिया जनजाति है वो किस तरह से काम कर रही है। उनकी फैमिली वैल्यूज जो हैं वो बाकी जगहों की फैमिली वैल्यूज से बहुत अधिक जो है रिसर्च में पाई जा रही है। तो हमें समझ आता है कि एक बहुत छोटी सी बात है कि उनकी ओढ़नी में वो अपने प्रियतम का नाम लिखाती है, और प्रियतम का नाम लिखाने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखा रही हैं, वो उस पे अपनी प्रिय सहेली का नाम लिखवाती हैं, अपनी बहन का नाम लिखवाती हैं। और यदि उसने एक बार अपनी ओढ़नी पे उनका नाम कशीदाकारी से लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि वो लाइफ टाइम उनको धोखा नहीं देंगी। तो ये वैल्यूज जो हैं वो हमें सीखने की जरूरत है हमारे ट्राइबल्स से। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को अंतिम पड़ाव की ओर ले चलती हूँ कि लकीरें कपड़ों पर खींचना तो हुनर है मेरा, लकीरें कपड़ों पर खींचना तो हुनर है मेरा, मगर आज मन के सूत को कातना सीख रही हूँ। दीपक तो रोज बुझते और जलते हैं महफिलों में, मगर मैं आज खुद के भीतर की चेतना को जगाना सीख रही हूँ। कपड़ा अगर फटे तो सुई से सिल भी जाता है, अगर धागा टूटे तो बस गांठ रह जाती है। मैं आज उन धागों को बिना गांठ के जोड़ना सीख रही हूँ, मैं आज खुद से मिलना सीख रही हूँ। और इस पावन भूमि पर आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शुरू में मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और बहुत संक्षिप्त में मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाने की चेष्टा की है। यदि कुछ गलती हुई हो तो मैं सभी दीदी जनों से क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने नाम जैसे आपके सरने में मोगरा जी है, आपने ऐसे ही खुशबू हमारे बीच में महका दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आई एम सॉरी, मुझे बीच में घुसने की आदत है, डोंट माइंड। बॉलीवुड के कलाकारों की सीट खाली नजर आ रही है मुझे, चिटकी लगाई थी मैंने खास, वो कहां पर है, कुछ ड्रामे में थे, बिजी थे, लेकिन अभी जहां कहीं भी हो कृपया हॉल में आ जाए। मुझे कुछ उनको इंट्रोड्यूस कराना है, तो इसलिए जहां कहीं भी हो प्लीज हॉल में आ जाए। बॉलीवुड की जिनके मैंने स्लिप लगाई है जो आए हैं वहां से 15 लोग, हाँ, जो अपने अपने इधर उधर नहीं बैठे, आपकी सीट रिजर्व की है वहीं पर बैठे, तो मुझे ध्यान रहेगा। आई वॉन्ट टू से समथिंग आफ्टर सम टाइम, थैंक यू।
अभी कार्यक्रम का हम विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं। दीप प्रज्वलन से भारतीय संस्कृति का ये प्रतीक, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश से अंधकार को दूर करने के लिए हम सभी आत्मदीप भी साथ साथ प्रज्वलित करेंगे। मैं मंचा से इन सभी सम्माननीय अतिथियों को विनम्र अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए आगे आ जाएं। असतो मा सतगमयो मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति शांति। मंच पर कुछ हमारे अतिथियों को भी निवेदन है। अल्फा दीदी दिल्ली, कुंदा दीदी चंद्रपुर, आप सभी भी दीप प्रज्वलन के लिए ऊपर आएंगे। तपस्विनी दीदी मुंबई, शीतल दीदी मुंबई, नीति बहन शाहबाद, राधा बहन शांतिवन, धीरज कुमार डिप्टी कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करनाल, दत्तात्रेय पांडे मुंबई, चिंतन भाई बकीवाल इंदौर, रश्मिका उपाध्याय, जजत चौधरी, श्रीधर कंबले कामले, दिनेश शर्मा करनाल, चरणजीत चरण करनाल, भानु भाई जी, दयाल भाई जी, नितिन भाई जी, नरेंद्र भाई चंद्रपुर, विद्या गोखले बहन पुणे, शकुंतला बहन इंदौर, डॉक्टर बलराम भाई, अनिल भाई मुंबई, आप सभी से निवेदन है मंच पर आकर
सुनेना बेन दिल्ली ओआरसी, दिनेश भाई आप सभी से निवेदन है अपना अपना स्थान आकर के दीप प्रज्वलन में सहयोग देंगे। आत्म ज्योति को साथ में प्रज्वलित करते आत्म स्थिति का अनुभव करेंगे। अपनी बैटरी को भी चालू करके सहयोग दे सकते हैं। थैंक यू शिव बाबा। अभी एक अनोखा ये जो पारिवारिक सद्भावना का अभियान आधुनिक संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों का संवर्धन कला के उपलक्ष्य में ये पूरा अभियान पूरे एक साल तक चलने वाला है। उसका लॉन्चिंग प्रोग्राम अभी हमारे बीच में माननीय अतिथि फुलसी मीना जी आप उपस्थित हैं। आपके हस्तों से हम निवेदन करते हैं कि ये अभियान का जो शुभारंभ होने जा रहा है तो कलश और परमात्मा ध्वज को देकर के आप सभी को एक जिम्मेवारी का कलश देकर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आगरा और आदरणीय चंद्रिका दीदी जी के हस्तों से कलश आपको दिया जाएगा और माननीय विधायक जी के हस्तों से परमात्मा ध्वज दिया जाएगा। सबसे पहले आगरा और दिल्ली जोन सामने आएंगे। म्यूजिक थोड़ा बजाते रहें। उसके बाद भोपाल जोन, उसके बाद मुंबई जोन। ताली भी साथ साथ आप जोरदार तालियों से सभी का उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। ये जो अभियान है घर घर तक पहुंचने वाला है। उसके बाद गुजरात जोन, इंदौर जोन, कर्नाटक जोन, महाराष्ट्र जोन, पंजाब जोन, राजस्थान, ईस्टर्न, तमिलनाडु,
RUP। ये अभियान पूरे हर एक के घर घर तक जाकर के जो आंतरिक सद्भावना की ज्योति जगाने, आप सभी से शुभ भावनाएं लेकर के घर घर तक जाएंगे तो आप सभी की करतल ध्वनि और आप सभी की अंतर प्रेरणा, अंतर शुभ भावनाएं साथ होंगी। आप सूक्ष्म में हर जगह पर उपस्थित रहेंगे और आप सभी सभी को अंदर से इतनी खुशी और उमंग उत्साह हो रहा है। इस अभियान को हम जन जन तक पहुंचाएं, फिर से अपनी भारतीय संस्कृति को उजागर करें, इसी भारतीय संस्कृति के दीप को और उसके उजाले को अनंत शक्तियों को प्रेरित कर अनेकों के दिलों को प्रेरित करें, ऐसी हमारी सबकी शुभ भावना शुभकामना है कि हर एक आत्मा इस अभियान से जुड़े और अपने घर को फिर से स्वर्ग बनाए, अपने घर को फिर से स्वर्ग बनाए। ताली भी जोरदार साथ में म्यूजिक के साथ चलाएं। भले ये शहरों में शुरू होगा लेकिन इसका प्रकाश पूरे गांव के तहसीलों तक हर एक के घर घर तक ले जाने का शुभ संकल्प है। तो आप सभी का मनसा सहयोग इच्छनीय है। अभी हमारे बीच माननीय फूल सिन्हा मीना जी पधारे हैं। आप उदयपुर ग्रामीण विधायक हैं, सभापति विधानसभा राजस्थान सरकार। आप पिछले 43 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, द्वितीय वर्ष शिक्षित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अध्यक्ष आप भारतीय जनता पार्टी से 1997 से जुड़ करके अनेकों पार्टी के राजस्थान में उदयपुर में ग्रामीण विधायक उदयपुर ग्रामीण विधायक के रूप में आप 3 बार रह चुके हैं। और ऐसे हमारे बीच माननीय फूल सिन्हा जी अपने उद्गार रखने के लिए आपसे निवेदन है। माननीय फूल सिन्हा जी,
आज हमारे आबू राज्य के अंदर बहुत ही सुंदर आयोजन के निमित्त मुझे आप लोगों का दर्शन करने का मौका मिला। ओम शांति। माउंट आबू राज्य में ज्ञान कला में कला एवं संस्कृति प्रमाण राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर आज आधुनिक संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन की कला ज्ञान सरोवर माउंट आबू। माउंट आबू को अभी विधानसभा में माउंट राज को नाम से संचालित किया गया है। आबू राज के नाम से इसको जाना जाएगा। अभी हमारे संगीत कला में भी आबू राज का नाम आया। आज वास्तव में चंद्रिका दीदी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अध्यक्षता कला संस्कृति प्रभाग अहमदाबाद से हैं और डॉक्टर दयाल जी भाई का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप भी आज हमारे राजस्थान में आकर जो इस माउंट आबू के अंदर कला एवं संस्कृति के इस कार्यक्रम में यहां पर मार्गदर्शन देके पूरा हिंदुस्तान में आज दीदी के हाथों से कलश और मेरे हाथों से जो ध्वज दिया गया है उससे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा पूरा देश में ही नहीं पूरा विश्व के अंदर इस हमारी संस्था का नाम जाना जाता है। आज हमारे पूनम दीदी, प्रेम दीदी और बीके प्रेम दीदी और डोली मोगरा जी मेरे उदयपुर से ही आती है और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की वास्तव में यह है, यहां पर आकर हमारे बीच में अपना उद्गार दिया और यहां पर हमारे डॉक्टर चिराग भोगणिया जी और तृप्ति बहन बीके तृप्ति बहन और बीके सतीश जी और सम्मानित मंचासीन अतिथि और सामने बिराजे हुए सभी मेरे भाई और बहनें और सभी कलाकार बंधुओं, आज वास्तव में मुझे आपके बीच में दिलीप जी गुप्ता ने कल ही कहा और आज इस कार्यक्रम में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे हम यहाँ आबू पर्वत को पूरी विश्व की दुनिया जानती है और यहाँ से संचालन करने की जो यह संस्था की जो गतिविधि है पूरा विश्व में प्रचलित है और सभी को एक ही सूत्र दिया जाता है कि हमारा जीवन शून्य से लेकर आखिरी तक हमारे को केवल और केवल आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा, हमारी आत्मा परमात्मा से अगर जुड़ जाती है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन के अंदर बहुत कुछ अपन करते हैं, देखते हैं और अपन उस मार्ग पर चलते हैं, मगर केवल और केवल आत्मा सो परमात्मा, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मोहम्मदन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका एक ही है परमात्मा जिससे हमारे को जुड़ना है। और जब हम तीसरी ज्योति अगर हासिल कर लेते हैं तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचता है। और ये आबू पर्वत, आबू राज जो वास्तव में पर्वत माला है, यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यहाँ पर तो गर्मी में भी सर्दी लगती है और बरसात में तो जैसे बादल हमारे यहाँ पर पर्वतमाला की गोद में विराजमान रहते हैं, तो ऐसे स्थान पर हमारे को यहाँ योग और हमारा जीवन को, हमारे जीवन में क्या अच्छा कर सकते हैं उसकी सारी प्रक्रिया यहाँ से हमारे को बताई जाती है। मैं पहले हमारे आबू के नीचे आपके अपने संस्था के अंदर मैं पहले दो बार आ चुका हूँ और मेरे यहीं से विधायक भाई सम्मानाम जी गरासिया से मैं वार्तालाप करता रहता हूँ, कल भी उनसे बात की थी तो उनको वास्तव में आज कोई काम था तो आ नहीं पाए थे, मगर मेरे को आपके यहाँ पर जो इस संस्था के बारे में पूरे विश्व में जो नाम है वो वास्तव में यहाँ से मैं यही कह सकता हूँ कि इस दुनिया के अंदर है तो केवल और केवल अपना मन को एकाग्रत करके अपना शरीर को भगवान के सुपुर्द कर दें और आत्मा को परमात्मा से जोड़ दें तो अपने को और कुछ नहीं चाहिए। और जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो ये दुनियादारी एक तरफ रहती है और हम अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। तो ऐसे इस संस्था का आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः मैं सभी मंचासीन अतिथियों का और दिलीप जी गुप्ता का आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे संस्था में मुझे आपने इस लायक समझा और सबके दर्शन करने का मौका दिया। तो मैं इस संस्था के संस्थापक महोदय का, महोदया जी का और सभी संचालनकर्ता टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो इस दुनिया के अंदर लोभ मोह त्याग कर अलग दुनिया बसाने का, जो वास्तव में अपना जीवन को सफल बनाने का जो हुनर यहाँ पर मिलता है, यहाँ शांति मिलती है, दुनिया से अलग हटकर हम इस संस्था से जो जुड़े और आगे बढ़े, इसमें कोई लोभ लालच मोह ये कुछ नहीं है, केवल और केवल हमारा जीवन को सफल बनाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए हम इससे जुड़ सकते हैं। मैं पुनः आभार धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और पुनः इस संस्था का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो बीड़ा उठाया है। भगवान आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और बहुत ही शक्ति प्रदान करे, और जो बचा हुआ है हमारा हिंदू में स्थान बचे हुए हैं उसमें भी इस संस्था का संचालन हो, यही बात कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वास्तव में जो आदमी कुछ करना चाहता है तो उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मेरी बहन कह रही थी कि बच्चा हमारा घर में देखेगा वही आगे करेगा, तो वास्तव में मैं बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी होती है। मैं सातवें पास था, मेरी बच्चियों को मैंने पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएशन किया और उन बच्चियों ने मेरे को 40 साल बाद में वापिस अध्ययन में ज्वाइन करवाया और मैं 10वीं से पढ़ना शुरू किया, एमए भी कर लिया, बीए भी कर लिया, बीए करके एमए कर लिया, अभी मैं पीएचडी के अध्ययन में हूँ और जब तक डॉक्टर नहीं लगेगा तब तक मैं प्रयास जारी रखूंगा। ये मतलब अपने परिवार में जो शिक्षा का संचार होता है तो वास्तव में बच्चा आगे बढ़कर अच्छा करता है, और हमारी इस संस्था में यही सिखाया जाता है कि आप अपने लिए, अपना परिवार के लिए, देश के लिए करते हो मगर हमारे लिए भी करें, अपने जीवन के लिए भी कुछ करें और हमारा जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो कि आपने एक शिक्षा की अविरत धारा अभी तक चालू रखी है। अभी हमारे बीच में ज्ञान की ज्योति बनकर जो जीवन को जीवन में उजियारा लाती, प्रेम स्नेह और संस्कारों की राह हमें दिखाती, सेवा समर्पण और सरलता जिनकी पहचान है, ऐसी हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी आपका हम इस मंच पर आशीर्वचन के लिए निवेदन करती हूं। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल संध्या काल से प्रारंभ हुआ हमारा ये सद्भावना का कार्यक्रम अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सर्व मंचस्थ महानुभाव एवं सभा में उपस्थित सभी परम स्नेही भाई एवं बहनें, जिस प्रोजेक्ट के लिए अभी हमने लॉन्चिंग कार्यक्रम किया और हमारे सम्मानीय भ्राता जी ने बहुत ही आशीर्वाद युक्त बोल उचारे हैं कि पूरे भारत और विश्व तक इसका आवाज जाएगा, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और ये अवश्य साकार होगा, ये मैं भी महसूस कर रही हूं। मुझे बोलने का टाइम 5 मिनट मिला हुआ है। जीवन के अंदर स्वयं के प्रति या कोई भी कार्य के प्रति अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आज मैं उसकी एक मास्टर की आपको देती हूं। आप जानते हैं वो मास्टर की कौन सी है? मास्टर की कौन सी है? कोई सुना सकते? गीता के अंदर उसका थोड़ा उल्लेख होता है। गीता में ये कहा है भगवान ने अर्जुन को, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। अर्थात कि सकारात्मक भावना, पॉजिटिविटी, ये एक बहुत बड़ा पावर और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले उसको अपने प्रति प्रयोग में ले आओ। मैं एक बहुत अच्छी आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं, मैं जब चाहूं कर सकती हूं, मैं जितना चाहूं कर सकती हूं, मैं जितना चाहूं करा सकती हूं। स्वयं के प्रति एक जबरदस्त आत्मविश्वास, यह है सकारात्मकता। कभी भूल से ये न सोचे, मुझे अनुभव नहीं है, मैं तो ये जानती नहीं हूं, मेरे पास इतने लोगों का संगठन नहीं है, कभी ये मत सोचो। सोचो मेरे साथ सारी भगवान की दुनिया है। जब उसी निश्चय के साथ आप आगे बढ़ेंगे, स्वयं स्वयं के प्रति सकारात्मक, ठीक उसी प्रकार आप जिस किसी के साथ जुड़ते हो, जिस किसी के संबंध में आते हो, उनके प्रति भी यही भावना हो कि ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये महान है, ये परमात्मा की संतान है, ये जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। और आपकी ये भावना, आपकी ये श्रद्धा दुनिया को बदलने के लिए काफी है। केवल आपकी भावना चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपकी दिल की स्नेह भावना चाहिए। एक छोटा सा मिसाल बता देती हूं, आज तो इस बात को 30 साल हो गया। केंद्र के गेट पर एक युवान आया 20 साल का, मैं झूले पर बैठी हुई थी, उनको देखा, मैंने देखते ही पूछा, भैया आपका नाम क्या है? फिर उनको बोला, आप बहुत तेजस्वी नजर आते हैं और आपका फ्यूचर बहुत ग्रेट है। मैंने इतना बोला, बस वो सुन करके वो परमात्मा के ध्यान रूम में जाकर के बैठा। ध्यान रूम में जाके बैठा, फिर वो घर चला गया। दूसरे दिन वो वापस आया और कहा, मुझे वो दीदी से बुलाओ, मेरे को मिलना है। मिला और कहा, मेरा विचार बदल गया, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। मैंने कहा, क्या विचार था? बोला, मैं तो इस सोच से आया था कि मुझे सुसाइड करना था। मैं एक धार्मिक स्थान पर जाकर भगवान की माफी मांग करके फिर जाकर के सुसाइड करूं, लेकिन आपके इस बोल ने मेरी मानसिकता को बदल दी है और अब मैं कभी मरने का नहीं सोचूंगा, पर आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, आप मैं क्या करूं। आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। दूसरों के प्रति भी पॉजिटिविटी रहे, समय के साथ भी पॉजिटिव रहना है। कल तक जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये युग का प्रभाव है। आज जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और कल जो होने वाला है वो तो बहुत अच्छा होने वाला है, धरती पर स्वर्ग आने वाला है। बहुत गहरा विषय है, इसके पर हमारे युवा प्रभाग ने पॉजिटिव चेंज कोर्स बनाया हुआ है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, पॉजिटिव मानसिकता क्या होती है, पॉजिटिव पर्सनालिटी क्या होती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होती है, यहाँ बुक स्टॉल पर आपको उसकी बुक भी मिलेगी। बस एक पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करके आप अपने जीवन में किसी भी कार्य के लिए कदम बढ़ाओ। मैं बड़े विश्वास के साथ कहती हूँ, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति।
बहुत सुंदर अनुभव सहित हमें अपने चिंतन की धारा को सकारात्मक बनाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम के अंत की ओर हम जा रहे हैं, उसके पहले हमारे बीच में भ्राता चिंतन बंकीवाला जी, आप पार्श्व गायक इंदौर से हैं, आपने अब उन्हों के गीत सुन करके उनकी प्रतिभा को देख लिया है, उनके चिंतन को भी दो शब्द सुनेंगे। आपके समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आप अभी तक 7 फिल्मों में चिंतन रॉकस्टार पार्श्व गायक रूप में रह चुके हैं, प्रेस्टीज ग्रुप द्वारा किशोरदा म्यूजिक अवार्ड से आप सम्मानित किए गए हैं। आपसे निवेदन है 2 मिनट में आप अपना वक्तव्य रखेंगे।
अभी तो आज कल रात को तो मैं आया हूँ और अभी आज सुबह से मेडिटेशन सत्र और उद्घाटन सत्र को अटेंड किया है, लेकिन अभी जो 2-3 रोज और रुकने का जो सौभाग्य मिल रहा है या मिलेगा, उसके लिए मैं 2 लाइनों में यही गा के और कहना चाहता हूँ, जो कि एक किशोरदा का उनका खुद का बनाया हुआ गीत है, उन पर फिल्माया गया था, 2 लाइनों में आपके सामने और फिर आभार व्यक्त करूंगा। आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। तो एकदम से ये कुछ पंक्तियां मेरे मन में आई, क्योंकि जिस स्थान पे मैं आया हूँ वहां मुझे ये पंक्तियों से बहुत मैं प्रभावित हुआ हूँ इस स्थान से, और सर्वप्रथम मंचवासीन दीदी के, चंद्रिका दीदी के श्री चरणों में प्रणाम वंदन ओम शांति। मंचासीन सभी प्रबुद्ध हस्तियों को और सम्मानित हस्तियों को प्रणाम करता हूँ। कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, प्लेबैक सिंगर हूँ, मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता। मंचासीन प्रबुद्ध हस्तियों ने बहुत सारी बातें कह दी है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से इंदौर में मुझे अलग अलग तरीके से मेरे को योग बन रहा था कि मैं माउंट आबू आकर आज इस पावन, परम पावन पवित्र धरा पे मैं आ सकूं, लेकिन वो संयोग नहीं बना। बात चल रही थी और संयोग नहीं बना, लेकिन मैं बहुत ही कृतज्ञ भाव से मैं आदरणीय शकुंतला दीदी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनने इंदौर सेंटर से, थोड़ी व्यस्तता रहती है, अभी हाल ही में मैं बॉम्बे था, उसके बाद रतलाम, अभी यहां से मैं इंदौर जाकर जयपुर और फिर उसके बाद वापिस बॉम्बे और फिर अब्रॉड जाना है, लेकिन मैंने जब ये बात कुछ दीदियों से करी तो उन्होंने ये कहा, भैया हमारे आशीष भैया ने भी यही कहा कि हम सब तो निमित्त मात्र हैं, ये कहीं ना कहीं शिव बाबा का, ये कहीं ना कहीं एक आपका परम पावन संयोग है जिसके कारण आज आपको इस धरा पे, इस पवित्र स्थान पे, इस भूमि पे आने का आपको सौभाग्य मिला है। कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य, जिस प्रकार से भी मेरे जस्ट पहले दीदी कहकर गई है कि जो होता है वो अच्छा होता है, जो हो गया वो अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो यही सकारात्मकता मुझे संगीत के माध्यम से मिलती है। इसलिए मैं पूरे देश और दुनिया के अंदर संगीत के माध्यम से अपना संगीत सुनाता हूँ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता है। आप सबका बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, आभार मानता हूँ। मेरे साथ मेरे मित्र आदरणीय डॉक्टर संजय मेहरा और डॉक्टर आरती मेहरा और मेरी वाइफ रश्मि बाकीवाला और मेरी डॉटर सौंदर्या बाकीवाला भी आए हैं, परिवार सहित आए हैं एक बड़ा परिवार बनाने के लिए आप सबके साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपनी शुभकामनाएं देने के लिए मैं डॉक्टर चिराग भोरणिया HOD RNU आकाशवाणी अहमदाबाद से पधारे हैं, प्रमुख क्षेत्रीय समाचार इकाई आकाशवाणी अहमदाबाद, जनसंचार एवं समाचार प्रबंधन, कानून शासन, मनोविज्ञान एवं सार्वजनिक नीति, युवा सशक्तिकरण, आपका बहुत ही ऐसा BDS MA मनोविज्ञान में, MA दार्शनिक में, पर्यावरण के अंदर और पर्यावरण विविध व्यवस्था विधि में PhD शोधकर्ता के रूप में आपकी सेवाएं आप दे रहे हैं। आपसे निवेदन है अपनी शुभकामनाएं कुछ शब्दों में रखें।
ओम शांति। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहने, मंचासीन अतिथिगण, देश भर से पधारे सभी विद्वान कलाकार एवं उपस्थित सभी महानुभाव, राष्ट्रीय सम्मेलन एवं एक वर्ष व्यापी अभियान के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान एवं आर्ट एंड कल्चर विंग को हार्दिक बधाइयां। मैं अपनी बात बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे रजू करूँगा, क्योंकि उम्र, अनुभव और ज्ञान के मामले में बहुत ही छोटा हूँ अभी। मेरी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा तो आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक अनुभव लेके मंचास्थीन अतिथिगण और मंचास्थीन ब्रह्मा कुमारी बहने बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी मैं, मेरे 3 साल के ट्विन्स है, एक डॉटर एंड एक सन। तो जो भी ये यहाँ के थीम जो है, जो हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न समय के अंदर जो पारिवारिक मूल्य है, वो पारिवारिक मूल्य को कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ एक साथ रख के आगे जिया जाए, तो एक ही चीज मैं बताऊंगा। एक छोटी सी स्टोरी हम सबने सुनी होगी, ये स्टोरी महात्मा गांधी जी के नाम पे प्रचलित है या तो फिर कोई साधु बाबा योगी के नाम पे प्रचलित है, कि कोई एक माता थी। वो माता अपने छोटे बच्चों, उसका छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा गुड़ खाता था, तो एक साधु बाबा के पास लेके गए और बताया कि साधु बाबा मेरा छोटा बच्चा है, ये बहुत गुड़ खाता है, आप उनको कुछ ज्ञान दीजिए, बताइए, समझाइए। साधु बाबा ने बताया कि आप एक काम कीजिए, आप 15 दिन बाद इनको मेरे पास वापस लेके आइए। फिर माता 15 दिन बाद बच्चे को वापस लेके गई। साधु बाबा ने 15 दिन बाद बच्चे को समझाया, बताया कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, जो भी कुछ समझाना होता है उस अपने तरीके से ज्ञान दिया, समझाया। माता को बहुत आश्चर्य हुआ, माता ने बताया कि ये तो आप 15 दिन पहले भी बता सकते थे। तो साधु बाबा ने यह सिंपल बताया कि 15 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैं तब ये बच्चे को नहीं बता पाऊंगा कि भाई आप गुड़ मत खाइए। तो मैंने मेरे 3 साल के बच्चों से यही सीखा है कि हम बच्चे को जो बताएंगे वो नहीं करेंगे, बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे। मैं उनको सिर्फ ज्ञान देता जाऊंगा तो मेरे बच्चे कभी वो मेरे ज्ञान नहीं लेंगे, वो कभी अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे IAS नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर मैं खुद अच्छा आदमी बन के जीऊंगा, खुद अच्छे एग्जाम्पल्स उनके सामने सेट करूंगा, मैं खुद करुणा, मैं खुद ऑनेस्टी या सारी चीजों का पालन कर रहा हूं, तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैंने ये देखी है कि जैसे मैं खुद एनिमल लवर हूं, तो कई बार ऐसे ही रोड के ऊपर हम जाते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं कि गाय माता है या डॉगी भाई है, हम ऐसे उनको बताते हैं। फिर बोलते हैं गाय माता जी का घर है, डॉगी भाई का घर है। तो एक आध बार ऐसा हुआ कि हम गाड़ी लेके जा रहे थे, बहुत लेट इवनिंग जैसा कुछ टाइम था, तो मैंने बच्चों को, मतलब ऐसे ही मैं बात भी करता हूँ उनके साथ ड्राइव करते टाइम, तो मैंने बच्चों को ये बताया कि अरे ये देखो देखो ये गाय माता रोड के ऊपर बैठी हुई है, अरे उनको बोलो बोलो हटाओ हटाओ, ऐसा कुछ मैं बात कर रहा। तो बोला मेरी डॉटर ने ये बताया कि नहीं नहीं पापा, ये तो उनका घर है, हम उनके घर पे बीच में चल रहे हैं। तो ये बहुत ही ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, और अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये जो भारतीय हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का सार भी बिल्कुल यही है कि जो मूल्य है वो उपदेश से नहीं आते, मूल्य सिर्फ उदाहरण से आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ओम शांति।
बहुत अच्छा जो कहा कि सबसे पहले हमें ही अपने जीवन में इन सब संकल्पों को दृढ़ करना है, क्योंकि स्व से विश्व है और यही विद्यालय का लक्ष्य है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसलिए हम जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो इन टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी से हम आज संकल्प करें कि हम पहले अपने घर को, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो ये संकल्प को हम साकार करें, अपने घर से शुरुआत करें और अपने घर के सदस्यों से हम मिलजुल कर बैठकर बातें करें। क्योंकि आप सब ने एक एडवर्टाइज देखी होगी मैगी की, जिसमें दिखाया जाता कि सबको आते हैं घर में, अपने अपने रूम में चले जाते, कोई आता है वो भी अपने रूम में, वो कर चला गया अपने रूम में। जो माँ थी उसको था कि अभी सबसे एकजुट होकर के मिलना है तो क्या करूं, तो उसने मैगी बनाई। तो मैगी की एडवर्टाइजमेंट करते कि ताकि सब एकजुट होकर के कम से कम खाने पर तो इकट्ठा होवे। कहने का मतलब कि एक पारिवारिक भावना जिसमें हरेक को अपनेपन चाहिए, प्रेम चाहिए, सद्भावना चाहिए, लेकिन मुझे कोई दे तब मैं दूं ये नहीं होता, मुझे पहले देना है। क्योंकि हम देवतुल्य आत्माएं हैं, देना ही हमारा कर्तव्य है। एक व्यक्ति जो कि डूब रहा था, डूबते डूबते वो बचाओ बचाओ बोल रहा था, सामने एक व्यक्ति दूसरा था, उसने कहा तेरा हाथ दे, तेरा हाथ दे, मैं पकड़ रहा हूं तेरा हाथ दे। तो ले ही नहीं रहा था, सुन ही नहीं रहा था, कब से वो बोले जा रहा था तो भी वो अपने, तो फिर उसने, उस व्यक्ति ने, बचाव वाले व्यक्ति ने कहा मेरा हाथ ले, तो उसने तुरंत पकड़ लिया। तो क्योंकि लेना ही उसको आता है, देना ही नहीं आता, इसलिए हमें ये अभी चाहिए कि हमें देना भी है। और क्योंकि देना ही हमारी भारतीय संस्कृति है, ये देवताई संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति जिसको हम आज अपना रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का जो संवर्धन हमें करना है, उसके लिए अपने ही अंदर के मूल्यों को मुझे बाहर निकालना है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता, इसके माध्यम से हम अपने ही अंदर जाकर के अपने भीतर को आत्मसात करें, अंतर्मुख होवे और अपने आप से बातें करें, जो मुझे चाहिए वो मेरे ही पास है, लेकिन हम रानी के गले के हार की तरह हर जगह ढूंढ रहे हैं, इसके पास मिल जाए, वहां मिल जाए, वहां मिल जाए, है अपने ही पास, पर मैं बाहर ढूंढती हूँ, अपने भीतर नहीं जाती हूँ। तो अभी कुछ मिनटों के लिए हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी तृप्ति बहन जी, आप क्षेत्रीय संचालिका कला संस्कृति प्रभाग गुजरात से हैं, भावनगर से, और आपने बचपन से इस विद्यालय से जुड़ करके राजयोग का गहन अभ्यास किया है। भावनगर के अंदर भी आप कई सेवा केंद्रों का संचालन करते हैं, कला संस्कृति से आप कई वर्षों से जुड़े हैं, कई कलाकारों का भी आपने जीवन ऐसे परिवर्तन किया कराया है। आपसे निवेदन है परमात्मा से अभी जुड़कर हम सभी कुछ ऐसी यात्रा करें जिसमें आत्मा की शक्ति हम प्राप्त करें।
ओम शांति। आज के इनोग्रेशन के सेक्शन में, सेशन में हमारे बीच आर्ट एंड कल्चर विंग के चेयरपर्सन आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, जिसके लिए कहूंगी कि वो त्याग तपस्या और सेवा की चैतन्य मूर्ति है, और आपने जो भी पॉजिटिव बातों के लिए सुना उसके संदर्भ में भी कहेंगे कि आप पॉजिटिव के भी मास्टर बनकर, अनुभवी बनकर सबको बड़ी दृढ़ता से इस दिशा में ले जाने वाले हो और ले जा रहे भी हो। तो ऐसे हमारे बीच अति अनुभवी आदरणीय दीदी जी बैठे हैं, सब पॉजिटिव वाइब्रेशन उनसे भी लेंगे और परमात्मा से भी लेंगे, क्योंकि मूल्यों की बात है। मूल्य सिर्फ कहने से, वर्णन करने से हमारे अंदर नहीं आएंगे, लेकिन उसका स्वरूप बनना होगा, या अंदर में जो है बड़ी गहराई में है वो खजाने को हमें बाहर निकालना होगा, ड्रिलिंग करनी होगी। तो अंदर पहुंचने के लिए ये मेडिटेशन, वो ड्रिलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। तो सभी अलर्ट होकर के व्यवस्थित बैठ जाए, सीधे बैठे, कहां भी कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर को भी स्थिर रखेंगे, हिलेंगे नहीं, यहां वहां देखेंगे नहीं। जैसे मैं बोलूं वैसे आप, वो सिर्फ सुनना नहीं है लेकिन सुनने के साथ देखना भी है। मेडिटेशन में मन और बुद्धि दो विशेष जरूरी है, और उसके माध्यम से ही, उस साधन से ही हम इसमें आगे बढ़ सकते। तो संकल्प और बुद्धि, देखना, विजुलाइज करना, वो बहुत जरूरी है, तभी अनुभूति कर सकते हैं। तो चले हम सब सकारात्मक चिंतन के माध्यम से अपनी बहुत ऊंची प्राप्ति की ओर चलेंगे, यात्रा पर चले। अभी आप सब बैठे हुए हो, सबके बीच में बैठे हो, लेकिन अभी अपना ध्यान खुद के प्रति एकाग्र करें। मैं सबके बीच होते हुए भी विशेष मेरी पहचान रखकर आगे बढ़ रहा हूं। जो शब्द है वो हमें दिशा देगा, जो लाइट म्यूजिक है वो उस शब्द की गति को आगे बढ़ाएगा, गतिमान करेगा। शरीर मेरा साधन है, दिखाई देने वाला बाह्य रूप से मैं शरीर हूं ऐसे समझते, लेकिन प्रश्न पूछेंगे क्या मैं शरीर हूं, गहराई से प्रश्न पूछो। और आज तो आप सभी ने ये पाठ आत्मा के बारे में बहुत गहराई से सुबह सुबह समझा है। तो शरीर तो मात्र वस्त्र है, उसको पहनकर पाठ बजाने वाली मैं आत्मा हूं। शरीर मकान के समान है, मैं मकान में रहने वाली चैतन्य शक्ति हूं। कर्मेंद्रिया सारी प्रजा है, मैं आत्मा राजा हूं। मन की सोच से हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां शांति है, प्रकृति के मध्य में। दो भ्रमर के बीच में अति सूक्ष्म शक्ति ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां केवल मेरे ही संकल्प है, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, केवल मेरे, ये मेरा व्यक्तिगत स्थान है। यही मेरा संसार है, यही मेरी दुनिया है। जैसे जैसे मैं स्वयं को इस स्थान पर केंद्रित करती हूं, इस स्थान का प्रकाश बढ़ रहा है। प्रकाश का स्रोत मैं ही हूं। अति शांत, अति शक्तिशाली हूं, दिव्य हूं, प्रकाश पुंज हूं। अब मैं आगे की यात्रा ऊपर की तरफ परम धाम की ओर खुद को जाता हुए देखे। सूक्ष्म सितारा ऊपर ही ऊपर, सूर्य चांद सितारों से भी पार, परम धाम में पहुंचकर मैं देख रहा हूं चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। अति सूक्ष्म तेजस्वी दिव्य आभा परमात्मा की हम देख रहे हैं। पवित्र दिव्य प्रेम बरस रहा है, बूंदे बूंदे मुझ आत्मा को, पुराने दागों की जो कमजोरियां हैं वो खत्म करके मेरी सफाई हो रही है। मेरा तेज, मेरी चमक बढ़ रही है। शांति के सागर की शीतल लहरें मुझे आत्मा में समा रही है। गहन शांति की अनुभूति कर रही हूं। डूब रही हूं शांति के सागर में। मुझे आत्मा में प्रेम और शांति आ गई तो मैं अनुभव कर रही हूं कि मुझे आत्मा में अभी सद्भावना का सूर्योदय हो रहा है। हरेक आत्मा के प्रति सद्भावना जागृत हो रही है। परम शक्ति, परम पवित्र परमात्मा से सद्भावना के प्रकंपन मेरे अंदर संचार हो रहा है। खुद को धन्य धन्य अनुभव करते हुए अभी मैं वापस साकारी दुनिया में, साकार शरीर में, प्रकृति के मध्य में मैं विराजमान होती हूं। इस अनुभूति के बाद अभी मुझे ऐसा एक दृढ़ संकल्प आता है कि ऐसे प्रकंपन मैं भी अपने परिवार में जरूर फैलाकर मूल्यों का संवर्धन करके बहुत अच्छा सुख शांति आनंदमय परिवार तैयार करके संबंधी दूर दूर की आत्माओं तक भी ये वाइब्रेशन जरूर फैलाऊंगी। ये मेरा आज का सदा के लिए शुभ संकल्प रहेगा। ओम शांति शांति शांति।
गहन अनुभूति, ये तो एक ट्रेलर था। हमें रोजाना इसका अभ्यास करना पड़ेगा। करत अभ्यास, तो करते करते हम उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन इस विद्यालय से जुड़े हुए सभी भाई बहने राजयोग का भी अभ्यास कई सालों से इसी प्रकार करते, विश्व परिवर्तन के कार्य को उजागर करने, परमात्मा के एक संकेत को लेकर के, परमात्मा की शक्ति को लेकर के आज पूरे विश्व में चल रहे हैं। तो इसी संकल्प के साथ हम यहां से जाएंगे कि हम स्व को शक्तिशाली बनाएं और हमारे स्व के परिवर्तन से जरूर अपने परिवारजनों में भी परिवर्तन दिखाई देगा। और हम सब यही चाहते हैं कि अपना परिवार सुदृढ़ बने, शक्तिशाली बने और संस्कृति से सभर बने। भले आधुनिकता कितनी भी हो, लेकिन अपनी संस्कृति को न भूले, उसे आगे बढ़ाते जाएं। अभी हमारे बीच आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय राजयोगी बीके सतीश जी के मैं निवेदन करती हूं। आप 1981 से समर्पित रूप में सेवाएं दे रहे हैं। 6,000 से भी अधिक गीतों को आपने गाया हुआ है। आपके गीतों को स्वर दिया आशा भोसले जी, अनुराधा जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, सुरेश वाडेकर, साधना सरगम, ऐसे कई गणमान्य आत्माओं ने आपके गीतों को स्वर दिया है। ऐसी महान विभूति को मैं निवेदन करती हूँ आभार व्यक्त करने को।
ओम शांति। ओम शांति। थक तो नहीं गए आप सब? इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा के आप सब सबका अभिनंदन कर लें। ज्यादा समय न लेते हुए, आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे, आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे, कर्तव्य भार से निर्भार हो न सकेंगे, पत्तों के बाट से पहाड़ तोलें तो कैसे, पत्तों के बाट से पहाड़ तोलें तो कैसे, कागज की कश्ती सिंधु पार हो न सकेंगे, कागज की कश्ती सिंधु पार हो न सकेंगे। सर्वप्रथम प्रभु कलाकार का अखंड असंख्य है आभार, जिसने हमको यहाँ बुलाया बांटा इतना प्यार, जिसने हमको यहाँ बुलाया बांटा इतना प्यार। आप ताली तो बजाइए, उस परमपिता परमात्मा की महती कृपा हुई जो हम सबको बुलाया मिलाया। उसकी उदारता प्यार का वर्णन कर न सकेंगे, कागज की कश्ती सिंधु पार हो न सकेंगे, आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे, कर्तव्य भार से निर्भार हो न सकेंगे। मधुर वाणी ने मधुर वाणी में स्वागत गान सुनाया, आगरा की बहनों ने सुंदर स्वागत नृत्य दिखाया। एक बार हमारी बहनों के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर लें। पूनम दीदी ने प्रवचन में स्वागत मन स्वागत सुमन लुटाया, और प्रेम दीदी ने बड़े प्रेम से विषय स्पष्ट कर दिखाया। प्रेम दीदी ने बड़े प्रेम से विषय स्पष्ट कर दिखाया। शब्दों की माला में महिमा पिरो न सकेंगे, पत्तों के बाट से पहाड़ तोले तो कैसे, कागज की कश्ती सिंधु पार हो न सकेंगे, सिंधु पार हो न सकेंगे। अतिथि विशेष डॉली बहन ने अनुभव सार बताए, और उदाहरण दे आपने अपने उच्च विचार सुनाए। मुख्य अतिथि फूल सिंह जी ने आबूराज की महिमा गाई, और संस्था की गतिविधियों की भूरी भूरी प्रशंसा सुनाई, भूरी भूरी प्रशंसा सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी ने आशीष के रत्न लुटाया, और सकारात्मकता की शक्ति से सबको अवगत कराया, सकारात्मकता की शक्ति से सबको अवगत कराया। चिंतन बंकीवाला जी ने किशोर जी को गाया, और उनकी लगन को देख करके हम सबका मन हर्षाया। जोरदार तालियां बजा के उनका अभिनंदन कर लेते हैं हम सब। और डॉक्टर चिराग भोरनिया जी ने कर्मों पर ध्यान खिंचाया, परिवार को संस्कारवान बनने का मर्म बताया, परिवार को संस्कारवान बनने का मर्म बताया। आत्म परिवर्तन से ही परिवर्तन होगा ये संसार, और हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, सुधरेगा परिवार, हम बदलेंगे जग बदलेगा, बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। और फिर तृप्ति दीदी जी ने सबको राजयोग कराया, तृप्ति दीदी जी ने सबको सुंदर राजयोग कराया, और कलाकारों को परम कलाकार से सुंदर सा मिलाया, कलाकारों को परम कलाकार से सुंदर सा मिलाया। और फाल्गुनी दीदी जी के बाद में पूछे क्या मंच संचालन किया, फाल्गुनी बहन जी ने किया सुंदर सफल मंच संचालन, और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन अभिवादन, हृदय की गहराइयों सबका अभिनंदन। जोरदार ताली बजा के सबका अभिनंदन कर, धन्यवाद।
आभार करने वाले आप सतीश जी का भी हम सभी बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते कि ऐसी सुंदर कविता के माध्यम से पहली बार हम सभी को अनुभव कराया। अभी हम सबके बीच में बलराम गुप्ता जी मंचासीन सभी महानुभावों को कुछ अपने गिफ्ट देना चाहते हैं, और बहनों से भी निवेदन करती हूँ कि मेहमानों को भी गिफ्ट से सम्मानित करें। भ्राता फूल सिंह जी, आशी गुप्ता जी भी साथ में आ जाए, सम्मान और अभिवादन कर रहे हैं। ईश्वरीय सौगात जो कि परमात्मा का आशीर्वाद भी साथ में दिया जा रहा है, दीदी आपका स्टॉल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। आप सबसे एक अनुरोध है, आज शाम को जो कार्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, 5 बजे सभी समय से आ जाएंगे, और 5 बजे सूरज भाई जी इस सत्र को जो कल लेने वाले थे वो आज लेने वाले हैं, तो सभी मेडिटेशन हॉल में इसके नीचे के हॉल में सभी जाएंगे, ये प्रोग्राम ये क्लास मिस नहीं करेंगे कोई भी ऐसा। ये सूरज भाई आप सभी जानते हैं कि ऐसे समाधान कार्यक्रम के आप धनी हैं, तो समाधान के रूप में भी आपने कईयों के समाधान करके जीवन को पलटा है, ऐसे सूरज भाई जी उनका आज कार्यक्रम शाम को 5 बजे रहेगा नीचे के हॉल में, मेडिटेशन हॉल में।
आप सब ध्यान दें, सब कोई हाथ उठाएं, 5 बजे आ जाएंगे ना सभी। सभी मेहमानों से निवेदन है कि उनकी संख्या बहुत कम है और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। सूरज भाई कहीं जाना था, हमने उनसे निवेदन किया कि वो अटेंड जरूर करें हमारे कलाकारों को, उन्होंने समय दिया। तो पूरा आशा करता हूं कि जो यहां नहीं भी हैं उनको भी आप बता सकें तो बताएं। ठीक 5 बजे आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है, पूरे सेशन को अटेंड करें। आप जितना सेशन अटेंड करेंगे उतना आपको लाभ अच्छा मिलेगा। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा के धन्यवाद कर लें आपको याद दिलाने के लिए।
उसके बाद जो भी समय अनुसार कार्यक्रम है उसी अनुसार चलेंगे, इसलिए आप सभी 5 बजे अपना स्थान ले लेंगे। जो भी अभी कुछ कारणों से हाजिर नहीं है उन सबको भी आप बता देंगे कि समय पर आप सभी 5 बजे से पहले ही अपना स्थान ले लेंगे।